परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, हमेशा की तरह आपका मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पहला थिस्लुनीकियों नामक पत्रिका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं हम विश्वास करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस बाइबल अध्ययन को सुने और जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसी प्रकार आप हमारे इस कार्यक्रम को अवश्य सुने और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पत्रियों में से थिस्लुनीकियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब आपके वचनों को सुने तो वे समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चलने पाएं। हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, दुखी और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें भी छुटकारा, चंगाई और शांति प्रदान करें। आज की इस अध्ययन के द्वारा आप अपनी महिमा लें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम पहला थिस्लुनीकियों की पत्री उसके एक अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दूसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे जिसका विषय है मसीह का आगमन एक सक्रिय आशा। जी हाँ, कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन को कलीसिया का उठाया जाना कहते हैं। यह सिद्धांत विवाद का विषय नहीं है, यह एक आचरण संबंधित आशा है। दुर्भाग्य से अनेकों का मानना है कि प्रभु यीशु का आगमन महाक्लेश के बाद होगा। कुछ लोगों का मानना है कि वह महाक्लेश के पहले आएगा और कुछ कहते हैं कि वह महाक्लेश के मध्य में आएगा। दूसरी और कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं है, परंतु फिर भी वे कहते हैं कि वे उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। जिसका जो भी भावना हो उसे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, आपका यह विचार आपके आचरण पर कैसा प्रभाव डालता है? क्या इससे आपके आचरण पर प्रभाव पड़ता है? यदि आपकी मान्यता का आपके आचरण पर प्रभाव नहीं पड़ता तो आपको फिर से सोचना होगा कि आप क्या विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु के आगमन की आशा विश्वासियों के जीवन आचरण के लिए एक प्रेरणादायक कारण होना आवश्यक है। मेरे मित्रों, हम देखेंगे कि प्रभु यीशु के सच्चे गवाह की प्रेरणा एवं रीति। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला थिस्लुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद, जहां पर लिखा है, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ। व्यर्थ अर्थात निष्परिणाम। पौलुस के कहने का अर्थ है, जब हम तुम्हारे मध्य थे तब हम एक विचाराधीन कल्पना प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, हमने तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही जो नई थी या सुनने में अच्छी थी, जिसका तुम्हारे जीवन पर असर न पड़ा हो। हमने कुछ दिन के लिए तुम्हारा मनोरंजन करके प्रस्थान नहीं किया। पौलुस का परिश्रम व्यर्थ नहीं था, निष्फल नहीं था। उसका थिस्सलुनीकी में प्रवेश करना अनेकों के लिए दिल दहला देने वाली बात थी, घटना थी। अनेकों ने मन फिराया और मसीह यीशु के उद्धारक ज्ञान को प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां एक कलीसिया की स्थापना हुई। मेरे मित्रों, पौलुस एक दार्शनिक विचार या काल्पनिक विचार नहीं सुना रहा था, परंतु एक ऐसा सत्य जो थिस्सलुनीके के नागरिकों पर प्रभाव डाल रहा था। सुसमाचार वहां की सड़कों पर चलता हुआ स्त्री और पुरुष के मन में, घर में और जीवन में प्रवेश कर गया। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:2 में लिखा है, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। यहाँ विरोधों का अर्थ पीड़ा से है। वहाँ पौलुस का घोर विरोध था, जिसके कारण उसके मन में बहुत पीड़ा पहुंची थी। पौलुस कहता है कि फिलिपी नगर में उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। प्रेरितों के काम 16 में इसका उल्लेख हमें मिलता है। परंतु थिस्सलुनीके में वह साहस धर कर आया था, अर्थात पूर्वकालीन बुरे अनुभवों के कारण उसका आत्मबल नहीं टूटा। उसने सुसमाचार को लज्जित नहीं होने दिया। अपने भयानक अनुभव के कारण पौलुस ने यह नहीं सोचा कि उसे अपनी प्रचार विधि बदलना है और अधिक प्रचार करने की अपेक्षा युक्तियों को काम में लेना है। जी नहीं, पौलुस गुप्त में विश्वास नहीं करता था। उसने थिस्सलुनीके में खुलकर प्रचार किया, जैसे थिस्सलुनीके में पौलुस के लिए कूटनीति का प्रयोग करना स्वाभाविक था। वह सोच सकता था कि वह मित्र बनाने और मनुष्य पर प्रभाव डालने में अति सावधानी रखे, अधिक चतुराई और आसान व्यापार पौलुस की नीति नहीं थी। उसने साहसपूर्वक सुसमाचार अर्थात उस सत्य का प्रचार किया। उसके बुरे अनुभवों से उसके प्रचार पर आंच नहीं आई, वह पीछे नहीं हटा। वहां आकर भी उसने परमेश्वर का वचन ही सुनाया। यदि आपसे कहा जाए कि आप पौलुस की तरह उपदेशों में सबसे महान किसे चुनेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अनेक अलग अलग लोगों का अलग अलग उत्तर होगा। उसके मन परिवर्तन के बाद दमिश्क में उसका प्रचार, उसकी प्रचार सेवा के आरंभ में साइप्रस के हाकिम सिर्गियुस पौलुस के समक्ष प्रेरित पौलुस का संदेश, पिसिदिया के अंताकिया में पौलुस का प्रचार, प्रथम प्रचार यात्रा में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों के अलग अलग उत्तर होंगे। मुझे यह सर्वप्रथम उपदेशों में से एक ऐसा प्रतीत होता है, जैसे फिर एथेंस नगर में पर्वत पर उसका उपदेश, कुरिन्थ नगर में उसका प्रतिवाद, तर्सुस में, इफिसुस में पौलुस का विवाद। ऐसे विचार में ये सब उपदेश महान है। कुछ उसके यरूशलेम में पकड़े जाने के समय के उपदेश को महान कहते हैं, कुछ फेलिक्स, फेस्तुस और अग्रिपा के समक्ष उसके उपदेश को उत्तम मानते हैं। अग्रिपा को दिया गया उसका संदेश वास्तव में बेजोड़ था। फिर इफिसुस के धर्मवृद्धों के मध्य उसका विदाई संदेश, उसने प्रत्येक संदेश एवं उपदेश में प्रभु यीशु को प्रस्तुत किया, अर्थात उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को। यदि मुझे उसके उपदेशों में से सर्वोत्तम या उत्तम उपदेश चुनना हो, तो मैं इनमें से किसी को नहीं चुनूंगा। मैं थिस्सलुनीके के नगर में उसके जीवन को चुनूंगा। उसका सर्वोत्तम संदेश न तो उसके शब्दों में था और न ही उसके लेखों में था, उसका जीवन ही उसका संदेश था। व्याख्या नहीं, जीवन का अनुभव था। उसका अंगीकार नहीं, आचरण था। जी हाँ, वह याकूब की बात मानता था, कर्म बिना विश्वास मृत है। उसने अपनी बात थिस्सलुनीके की सड़कों पर रखी और लोगों ने उसके वचन को सुना। प्रत्येक विश्वासी एक प्रचारक है और संभवतः आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको प्रचारक कहता हूं, परंतु सच तो यही है कि आप एक प्रचारक हैं। आप अपने जीवन से दर्शकों को संदेश दे रहे हैं। आपके परिवार में भी आप अपने बच्चों को संदेश सुनाते हैं। मेरे विचार में यह एक कारण है कि हमारे इतने अधिक युवा आज मुख्य मार्गों पर, उपमार्गों पर, सड़कों पर, गलियों में हैं। वे अपने माता पिता को घर में देख चुके हैं और उन्होंने जो देखा वह उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे सड़कों पर निकल पड़े हैं। मेरे मित्रों, आपका सबसे महान संदेश आपके जीवन से प्रसारित होता है। आप माने या ना माने, लोग आपके जीवन को पढ़ते और देखते हैं। पौलुस हमें थिस्सलुनीके नगर में प्रचार किए गए संदेश का उल्लेख करता है, पद 3-6। इसके बाद वह थिस्सलुनीके के विश्वासियों के साथ अपने संबंधों की भी चर्चा करेगा। यह उनके लिए एक ढाड़स बंधाने वाली माता के समान था। पद 7 वह निर्देश देने वाली एक पिता के समान था, और तब पद 11 और एक भाई के समान उन्हें चुनौती देता था पद 14 में। तो आइए हम आगे बढ़ें और पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:3 में लिखा है, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से और न अशुद्धता से और न छल के साथ है। भ्रम अर्थात चूक, पौलुस के संदेश में मिलावट नहीं थी। पौलुस ने सुसमाचार में पानी नहीं मिलाया था जैसे लोग आज दूध में पानी मिलाते हैं। पौलुस श्रोताओं के अनुसार अपने संदेश में परिवर्तन नहीं करता था। मेरे प्रियो, मेरे कौतूहल का कारण है कि कुछ प्रचारक एक स्थान पर स्पष्ट एवं शुद्ध सुसमाचार प्रचार करते हैं तो दूसरे स्थान पर उसके संदेश में स्पष्ट कुछ भी नहीं होता है। पौलुस के साथ ऐसा नहीं था, उसका उपदेश भ्रम के साथ नहीं था। आगे हम देखेंगे अशुद्धता अर्थात लालसा। पौलुस के मन में किसी प्रकार का लालच नहीं था। पौलुस थिस्सलुनीके में न तो धर्मोपार्जन करने आया था और न ही नाम कमाने के लिए। वह अपनी आवभगत के उद्देश्य से वहां पर नहीं आया था। वह शुद्ध उद्देश्यों के साथ वहां पर गया था, अतः उसमें किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धता नहीं थी, न छल के साथ। उसने उनके शोषण हेतु युक्तियां नहीं अपनाई थी। उसने पुराने स्वभाव के मनोवेग और हानिकारक अभिलाषाओं के अधीन वहां वह नहीं गया था। उसने इस पापी देह के निमित्त कुछ भी नहीं किया था। मेरे प्रियो, यहां हम प्रेरित पौलुस से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं एक ऐसे प्रचारक को जानता था जो कभी एक महान उपदेशक था, परंतु वह मेरे मन के सम्मान में घट गया, क्योंकि वह अपनी एक पुरानी कलीसिया में लौट गया। कलीसिया तो वर्तमान प्रचारक या पास्टर की बुराइयां करती थी, वह भी उनके साथ उनकी बुराई में सहभागी हुआ, वरन बुराई को बढ़ावा भी दिया। पौलुस ऐसा काम कभी नहीं करता था। उसने थिस्सलुनीके में प्रचार किया, परंतु उनके साथ छल नहीं किया। परमेश्वर के वचन के प्रत्येक शिक्षक को स्वयं से एक प्रश्न पूछना है कि क्या वह भ्रम, छल और अशुद्धता की मिलावट की शिक्षा दे रहा है। हमें अपने विवेक के साथ सत्य निष्ठा निभाना है। जी हाँ, हमें अपने उद्देश्यों को परखना है। क्या हम मित्र बनाने और मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए प्रचार करते हैं, या क्या हम ईमानदारी से परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं? मेरे मित्रों, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अनेक गलतियां की है। मैंने प्रभु को अनेक बार निराश किया है, परंतु आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उसने मुझे त्याग नहीं दिया। यदि मैं परमेश्वर के स्थान पर होता तो बहुत पहले ही अपने आप को त्याग देता। सेवा में प्रवेश करते समय मैंने प्रभु से प्रतिज्ञा की थी कि मैं बोझ में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। मैं सच कहता हूं कि मैंने संकटों में पड़ने की अपेक्षा की थी, परंतु परमेश्वर मेरे साथ भला कर रहा था। वह जानता था कि समय आने पर मैं भाग खड़ा होऊंगा। मैं आभारी हूँ कि मैं आज प्रभु को देखकर कह सकता हूँ, हे प्रभु, मैंने बहुत गलतियां की हैं और तुझे निराश किया, परंतु मैंने यथासंभव तेरा वचन अच्छे से अच्छे रूप में सुनाया है। यदि मैं और भी अच्छा कर सकता तो अवश्य करता, परंतु तेरे अनुग्रह से मैं अपना सर्वोच्च प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, मुझे यह अंश बहुत ही अच्छा लगता है। पौलुस थिस्सलुनीकी के विश्वासियों से कहने योग्य था, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे पास स्वार्थ लेकर नहीं आया था, मैं तुमसे चंदा लेने नहीं आया था, मैं तुम्हारे भेड़ों का ऊन कतरने नहीं आया था, मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाने और विश्वास में दृढ़ करने के लिए आया था। यही मेरा उद्देश्य था। ऐसा उद्देश्य लेकर प्रचारक समुद्र पार कर सकता है। आंधियां तो उठेंगी, परंतु प्रभु यीशु अपने सेवक को पार लगाएगा। यदि आप सचमुच में निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी सहायता करता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:4 में हम पढ़ते हैं, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। ध्यान दीजिए, योग्य ठहरा कर अर्थात परख कर देखा या प्रमाणित किया। पौलुस के कहने का अर्थ है कि सुसमाचार प्रचार में वह नवदीक्षित नहीं था। वह न तो मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला था और न ही ख्याति चाहता था। वह नाम कमाने के प्रयास में नहीं था। जी हाँ, वह मनुष्यों की राय जानने के लिए प्रचार नहीं करता था। प्रचार के पीछे उसके मन में यही था कि परमेश्वर की राय उसके विषय में क्या होगी। उसका जीवन परमेश्वर की परख में खड़ा था। उसने न तो तुच्छ विधियां काम में ली और न ही कोई युक्तियां चलाई। मेरे प्रियो, यदि आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी सेवकाई को आशीष देता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। मेरे मित्रों, पौलुस स्पष्टवादी था। वह कहता है कि वह किसी की चापलूसी के लिए नहीं आया था। वह कलीसिया के धनवानों को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया था, अर्थात वह किसी को प्रसन्न नहीं करता था। हमारी वर्तमान की भाषा के अनुसार वह किसी को मक्खन नहीं लगाता था। जी हाँ, चापलूसी करना या चापलूसी हमारा मुंह बंद कर देती है। हम वास्तव में नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कहें। जब कोई मेरी चापलूसी करता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं या क्या कहूं। शेक्सपियर एक नाटककार था और उसके एक नाटक में एक हास्य कलाकार कहता है, श्रीमान जी, वे मेरी प्रशंसा करके मुझे गधा बनाते हैं, परंतु मेरे दुश्मन मुझे साफ कहते हैं कि मैं गधा हूँ। अतः श्रीमान जी, मेरे बैरियों के कारण मैं अपने बारे में जानने का लाभ उठाता हूँ, परंतु मेरे मित्र मुझे गाली देते हैं। जी हाँ, सच है, मेरे मित्र कभी कभी मेरे दुश्मनों से अधिक खतरनाक होते हैं। पौलुस चापलूसी कभी नहीं करता था। हमारे देश में धनवानों में चापलूसी की कमी नहीं है। यदि कोई मसीही कार्यक्रम या मसीही सेवा इन धनवानों की चापलूसी ना करे तो वे आर्थिक सहयोग नहीं देंगे। परमेश्वर ऐसी कलीसिया या सेवा पर दया करे जो चापलूसी चाहने वालों पर निर्भर करें कि वे आर्थिक सहयोग दें। मेरे विचार में यह आज कलीसिया पर श्राप है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी प्रकार की चापलूसी करके उसकी सेवा करें। वह चाहता है कि आप स्पष्टवादी हों। पौलुस चापलूसी की बातें नहीं करता था। मेरे अपने विचार में पैसा सेवा का पाप नहीं है। मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सेवा में मेरे परिचितों के लिए पैसा कभी परीक्षा का कारण रहा हो। लालसा के अनेक रंग होते हैं मनुष्य को सम्मान, ख्याति और पद प्रतिष्ठा की लालसा होती है। हमें अपने मन को खोजकर लालच को देखना है। आज कई महाविद्यालयों में सम्मान के लिए कई उपाधियां दी जाती हैं कि मनुष्यों को खरीद लें। वे बहुतायत से ऐसी उपाधियां देते हैं, इसके बाद में दान या अन्य आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यह भी कारण है कि यदि सब उपाधियां परिश्रम से प्राप्त की जाएं तो अच्छा होगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे और न किसी से। ध्यान दीजिए, पौलुस ने न तो कभी पद प्रतिष्ठा न ही कभी सम्मान की खोज की या लालसा रखी। उसने समानार्थक पदवी को नहीं खोजा। उसके उद्देश्य निष्कपट थे। उसका उद्देश्य था कि वह परमेश्वर के वचन को सुनाए, ताकि लोग सत्य को जाने, परमेश्वर को जाने और उस भयानक दंड से, उस नरक की आग से बच जाएं। यही आपका और मेरा भी उद्देश्य होना है, न कि किसी प्रकार के पद और प्रतिष्ठा की, और न ही किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग की। मेरे प्रियो, आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें कि हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन है, हमारे उद्देश्य क्या हैं, क्या निष्कपट हैं या उसके पीछे कुछ राज है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में पौलुस के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान,
मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान,
मेरो मन लागो,
मेरो मन लागो,
मेरो
यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान।
के ध्यान।
प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, पूरे किए अरमान, पूरे किए अरमान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान।
जो कोई तेरी शरण में आया, जो कोई तेरी शरण में आया, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान।
जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाई शिफा उसिया, पाई शिफा उसिया। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान।
बिनती हमारी सुनिए यीशु जी, बिनती हमारी सुनिए यीशु जी, दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान।
मेरो मन लागो,
मेरो मन लागो,
मेरो मन लागो,
मेरो मन लागो
यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान।